जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पांव तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ।
ओम शांति। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंच नीच सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मांडवे की रोटी, रागी और हुड़के की थाप, हर एक मन करता शिव जी का जाप। ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि, इतने वीरों की ये जन्मभूमि। तुम आंचल हो भारत का, जीवन की धूप में छाओ तुम। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाव तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता और धन्य धन्य हो जाता हूँ। जहाँ पवन भय संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते, जहाँ ऊंच नीच सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता। भारत देव भूमि है, किसने कहा है India is not just geography or history. It's not only a nation, a country, a mere piece of land. It is something more. It is a metaphor, a poetry, something invisible, but very tangible. It is vibrating with certain energy field which no other country can claim. For almost 10,000 years, thousands of people have reached to the ultimate explosion of consciousness. Their vibrations are still alive. Their impact is in the very air. We just need a certain perceptivity, a certain capacity to receive the invisible that surrounds this strange land. भारत केवल भूगोल या इतिहास नहीं है, यह केवल एक राष्ट्र, एक देश, एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह कुछ और है। यह एक रूपक है, अ मेटाफर, एक कविता है, कुछ अदृश्य है, लेकिन बहुत कुछ मूर्त, या कुछ निश्चित ऊर्जा क्षेत्रों के साथ कंपित हो रहा है, जिस पर अन्य कोई देश दावा नहीं कर सकता। चेतना का अंतिम विस्फोट, उसका कंपन अभी भी जीवित है, उसका प्रभाव अभी भी हवा में है। तो भारत की ये भूमि, बाबा कहते हैं ये अविनाशी खंड है, मेरा बर्थ प्लेस है, मेरी जन्मभूमि है। सारा खेल विश्व का किस पर है? भारत पर। द राइज एंड द फॉल ऑफ इंडिया। भारत क्या था, क्या बना? इंसॉल्वेंट था, सॉल्वेंट बना। साहूकार था, कंगाल बना। ये देवभूमि है, अर्थात यहां देवताओं का निवास था। भारत क्यों दुर्भाग्यशाली बना? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। किस बीमारी ने इसे जकड़ा? जब तक बीमारी का पता ना लगाया जाए, जब तक निदान ना हो, डायग्नोसिस ना हो, तब तक जो भी इलाज किया जाएगा, शायद वो इलाज बीमारी से अधिक घातक होगा। बीमारी कब आई, कहाँ आई, कैसे आई, इसको जानना बहुत आवश्यक है। बिना निदान के अगर कोई वैद्य किसी का इलाज करता है, तो उसका इलाज उसे मार देगा। सुबह की साकार मुरली, कौन सी बीमारी है? पांच विकारों की कड़ी बीमारी। बीमारी कौन सी है? पांच विकारों की कड़ी बीमारी। डायग्नोसिस, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, ये अहंकार है, ये वासना है। जब निदान होगा तो फिर इलाज चालू होगा। और भारत कौन है? हम ही भारत है। भारत किसी केवल जगह का नाम नहीं। इट इज नॉट ज्योग्राफी और इवन हिस्ट्री। भारत माता कौन है? एक एक भारत माता है। भारत का उद्धार, अर्थात किसका उद्धार? एक एक भारतवासी का उद्धार। भारत का पतन, अर्थात एक एक भारतवासी का पतन। तो 26 जनवरी भाग्य है हम सबका कि हमने कहाँ जन्म लिया? भारत में। कई देशों में ऐसी मान्यता है, यदि स्वर्ग जाना है तो भारत में जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही मुक्ति हो सकती है, तब तक मुक्ति नहीं है। जहां पवन बहे संकल्प लिए, ये वो भूमि है जहां पर संकल्प है। किसी ने ये भी कहा है भारत के लिए कि ये कितना आश्चर्य है कि यहां सत्य की खोज के लिए लोगों ने सब कुछ स्वाहा कर दिया, यहां कोई फिलॉसफी नहीं है। इट इज स्ट्रेंज दैट बिकॉज इट हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग फॉर द सिंगल सर्च, द सर्च फॉर द ट्रुथ। इट हैज नॉट प्रोड्यूस्ड ग्रेट फिलोसोफर्स। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो नो प्लेटो, नो एरिस्टोटल, नो थॉमस एक्विनास, नो कैंट, नो हीगल, नो ब्रैडली, नो बर्ट्रेंड रसल। द होल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रोड्यूस्ड अ सिंगल फिलोसोफर एंड दे हैव बीन सर्चिंग फॉर ट्रुथ। Certainly their search was very different from the search that has been done in other countries. In other countries, people were thinking about truth. In India, people were not thinking about truth. Because how can you think about truth? Either you know it or you don't know it. Thinking is impossible. Philosophy is impossible. It is absolutely an absurd and futile exercise. It is just like a blind man thinking about light. What can he think? He may be a great genius, maybe a great logician. It is not going to help. Neither logic is needed nor genius is needed. What is needed is eyes to see. Light can be seen but cannot be thought. Truth can be seen but cannot be thought. Because if we don't have a parallel word in, hence we don't have a parallel word. India mein philosophy ke liye koi shabd nahi hai. Hum philosophy ko kya kehte hain? English mein darshan. The search for truth we call darshan, and darshan means seeing. Philosophy means thinking. And thinking is circular, about and about. It never reaches to the point of experiencing. ये कितना आश्चर्य है, भारत के अलावा बाकी सारे देश जो है तत्वज्ञान है, वहां पर फिलोसॉफीज है। भारत में षड दर्शन कहा जाता है, दर्शन कहा है शब्द, दर्शन अर्थात देखना, देखना अर्थात सत्य के बारे में सोचा कैसा जा सकता है, सत्य को देखा जाता है, ये है जो ऋषि मुनियों ने देखा अपनी ध्यान अवस्था में। इसलिए भारत विश्व गुरु है। जहां पवन बहे संकल्प लिए, हवाओं में क्या है यहां पर? संकल्प शक्ति है। जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंच नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसे मां कहा गया है। यहां एकमात्र ऐसा देश है जहां पर यहां के वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और अखंड भारत की संकल्पना की। एकमात्र देश है, किसी दूसरे देश पर इसने कभी आक्रमण नहीं किया। और भारत के इतिहास को देखो, शुरुआत करो द्वापर से, अलेक्जेंडर, एक एक करके आते ही गए, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, हुन आए, मुगल आए, मोंगल आए, डच आए, कितने सारे आए, एक एक करते आए, पुर्तगाल आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सब आते रहे। ये भारत की विशेषता है। ये देव भूमि है, हम देवों के ही तो वंशज है। आम भी कुमार जो होता है वो सिकंदर के लिए द्वार खोल देता है। आम भी कुमार और चाणक्य का एक संवाद है। आम भी कुमार जो है वो सिकंदर का प्रशंसक है। वो कहता है चाणक्य से कि सिकंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवपुत्र है। इसलिए भारत को उसका स्वागत करना चाहिए, उसे आने देना चाहिए। चाणक्य कहता है वो तो उन यवनों ने केवल एक देवपुत्र को जन्म दिया है, परंतु भारत तो देव भूमि है, ये देवों की ही भूमि है, हम देवों के ही वंशज है। राष्ट्र प्रेम, देव देश प्रेम, स्वयं को उठाना, विकारों से मुक्त करना, यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही गणतंत्र है। तो संकल्पवान बनना ये लक्ष्य है, संकल्प लेना और उसे पूर्ण करना, यही वीरों का, वीर होने का प्रमाण है, टेस्टिमोनियल, सबूत देना, दिखना चाहिए। रामायण में वर्णन है, कितना आश्चर्य है कि रामायण की एक ही कथा सदियों से चालू आ रही है, फिर भी बोर नहीं होते लोग। राम कथा का आयोजन होता है, रामलीला का आयोजन होता है, सब कुछ सब पता है, फिर भी सात सात दिन का सप्ताह होता है। कितना मानस, भारतीय मानस में कितनी गहरी बैठ गई है, क्योंकि उसमें इतनी परतें हैं। द्वापर में लिखी ये सारी कहानियां, कथाएं उस समय के भारत को दर्शाती है, उस समय की मानसिकता को दर्शाती है। विदेश में ऐसी कोई कथा नहीं है जो दोहराई जाती है, पाठ किया जाता है। यहां पर विदेश में कोई पाठ होता है क्या? पाठ नहीं होता है, यहां होता है पाठ। रामायण में वर्णन है, राम लक्ष्मण सीता वापस आ गए हैं, राज्याभिषेक हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक अगस्त मुनि आते हैं, वाद विवाद होता है, यहां वहां की बातें होती है, और अचानक युद्ध प्रसंग छिड़ जाता है। और अगस्त मुनि कहते हैं कि हे राम, बताओ तुमने क्या क्या किया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा, कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारा, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, अतिकाय को मारा। अगस्त जी कहते हैं, इन सब में मेघनाथ को मारना सबसे मुश्किल काम था, और वो लक्ष्मण ने किया, इसलिए लक्ष्मण सबसे बड़ा योद्धा है। राम जी को आश्चर्य होता है ये सुनकर, पर खुशी भी होती है लक्ष्मण के लिए, भाई ये तो ज्यादा ही खुशी होती है कि वास्तव में लक्ष्मण सर्वश्रेष्ठ है, परंतु क्यों, उत्सुकता है जानने की। अगस्त मुनि कहते हैं, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि मेघनाथ को वही मार सकता है जिसमें तीन गुण हो। पहला, उसने 14 साल स्त्री का मुख ना देखा हो, केवल वही मेघनाथ को मार सकता है, इंद्रजीत को मार सकता है, ब्रह्मचारी हो। दूसरा, जिसने 14 वर्ष तक नींद ना की हो। तीसरा, 14 वर्ष तक ना खाना ना पीना, लेवल 4 ब्रदेरियन। जिसने 14 वर्ष जो निराहारी रहा है, ये तीन विशेषताएं जिसमें है, केवल वही इंद्रजीत का वध कर सकता है। राम जी को आश्चर्य होता है, ये तीन विशेषताएं, हम तीनों साथ में ही रहे 14 वर्ष, बाजू में ही कुटिया थी, और फल तो मैं ही उसको देता था रोज, और वो सोता भी था, और सीता तो हमारे साथ ही थी, तो ये तीनों क्राइटेरिया वो कैसे फुलफिल करेगा। अगस्त मुनि कहते हैं कि लक्ष्मण जी बहादुर इसलिए भी, क्योंकि इंद्रजीत को मारना इतना आसान नहीं था। इंद्रजीत ने तो इंद्र को बंदी बना लिया था, वो तो ब्रह्मा बीच में आ गया और कहा कि इंद्र को दान दे दो मुझे, ऑन ब्रह्मास रिक्वेस्ट इंद्र की मुक्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा था। तो अगस्त मुनि कहते, क्यों ना हम लक्ष्मण से ही पूछा जाए, पूछ ले ये कैसे तीन क्राइटेरिया पूरे किए। तो लक्ष्मण जी कहते, हाँ ये सही है, हम रहे तो साथ में, परंतु सीता को मुख मैंने कभी देखा ही नहीं। आपको याद होगा जब ऋषि मुक्त पर्वत पर सुग्रीव वो गहने लेकर आए और मुझसे पूछने लगा कि ये गहने किसके हैं, तो मैंने माँ सीता के नुपुर के अलावा और कोई भी गहनों को नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने उनका चेहरा देखा ही नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा, निद्राजीत, लक्ष्मण तुम तो बाजू में कुटिया में सोते थे। वो कहते हैं मैं सोता था ही नहीं कभी 14 साल, जब आपने मैं पहरा देता था सिक्योरिटी, क्योंकि निशाचर वो सब थे उधर, और मैंने निद्रा देवी को आदेश दिया, हे निद्रा देवी जाओ 14 वर्ष तक मुझे तंग मत करना, 14 वर्ष के बाद जब राज्य अभिषेक होगा शायद तब तुम आ सकती हो। और वो कहता कि भैया आपको याद होगा कि जब आपका राज्य अभिषेक हो रहा था और मैं पीछे खड़ा था वो लेके, क्या कहते हैं उसको, छतरी लेके, छत्र लेके, तो वो मेरे हाथ से फिसल गया था क्योंकि नींद आ गई, क्योंकि 14 वर्ष तब पूरे हुए और तब मुझे नींद आई, वो 14 वर्ष मैं सोया ही नहीं, निद्रा जीत था। और तीसरा क्राइटेरिया, कहते आप मुझे फल देते तो थे और कहते थे लक्ष्मण इन्हें रख लो, आपने कभी खाने के लिए कहा ही नहीं, आपने कहा था लक्ष्मण ये लो फल, ये रख लो, तो मैं उन्हें रख आता था, खाने को आपने कहा ही नहीं तो मैंने खाया ही नहीं, 14 वर्ष ना खाना ना पीना। राम जी कहते जाओ लक्ष्मण कहाँ रखे है वो फल, लेके आओ। सारे फल लेके आते कुटिया से, फलों की गिनती होती है, फलों में 7 दिन के फल नहीं है, अर्थात लक्ष्मण तुमने 7 दिन तो भोजन किया है। लक्ष्मण जी कहते नहीं, पहला दिन जब पिता की मृत्यु हुई तो कहां से भोजन करते, शोक मग्न थे हम दोनों, इसलिए भोजन नहीं किया। दूसरा दिन सीता का अपहरण जब हुआ, किडनैपिंग, तो कहां भोजन और कहां क्या, हमें भान थोड़ी था, उस दिन हमने भोजन नहीं किया उस दिन। सेकंड, तीसरा, जब आप सागर से प्रार्थना कर रहे थे और ध्यान मग्न होकर बैठ गए थे 3 दिन तक, तो वो दिन भोजन नहीं किया था। चौथा, जब इंद्रजीत ने नागपाश में मार घायल कर दिया था तब भोजन नहीं किया था। अगला, जब मेघनाथ ने मायावी सीता का वध कर दिया था, दिखाया था कि सीता को मार दिया और हम दोनों शोकमग्न हो गए थे क्योंकि सीता चली गई, पर वो मायावी सीता थी, असली सीता नहीं। अगला, जब मेघनाथ ने शक्तिबान मारा था और लक्ष्मण नागपाश में इसमें घायल हो गया था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे फिर उस दिन, और जब रावण का आपने वध किया था, इन 7 दिनों में हमें भोजन का भान कहा था। कैलोरी काउंटिंग, फूड कैलोरी, ये भारत है संकल्पवान, जहां एक एक वीर, एक एक वीर है, एक एक महावीर है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने आप हम दोनों को भी दिखाया है रामायण में, मंत्र है बला अति बला, बल अति बला, ये विद्या है जिसमें रावण का, जिसमें रामायण में वर्णन है इस विद्या का, और पूरा विस्तार से लिखा हुआ है क्या होता है इस विद्या में, जो कि विश्वामित्र ने दी थी श्री राम को। गृहान वत्स्य सलिलम मा ऋत कालस्य पर्ययः बलाम अति बलाम तथा, ये वो विद्या है जिसमें व्यक्ति को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न थकान होती है, न बुखार आता है, न शत्रु उसे मार सकता है, न उसे नींद की आवश्यकता होती है, सतत जागृत रहता है, ऐसी विद्याओं का भारतीय संस्कृति में वर्णन है। ये सब रामायण के श्लोक है। ये विद्या मैं तुम्हें देता हूं, इसको देकर हे रघुवीर तुम्हें क्या प्राप्ति होगी, नन कैन इक्वल यू इन द होल वर्ल्ड, कोई भी तुम्हारे समान नहीं हो सकता, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। बलाम अति बलाम, ये बला अति बला विद्या है। इस विद्या का वर्णन एचआरएम ने भी किया है और हमने इसको देखा भी था सन गेजिंग के चैप्टर में, जिसमें व्यक्ति ये सब मानवीय कमजोरियों से परे निकल जाता है, भूख प्यास निद्रा ये उसे तंग नहीं करते, निरंतर शक्तिशाली रहता है, कभी थकान नहीं होती, कभी बुढ़ापा नहीं होता है उसको। इसका वर्णन रामायण में, इसका वर्णन जैन फिलोसॉफी में, बुद्धिज्म में, हर धर्म में ये इतनी पुरानी विद्या है, क्योंकि भूख, प्यास, निद्रा, थकान, बुढ़ापा, बीमारियां ये व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता से च्युत कर देती है, इसलिए इसे जानना आवश्यकता है। तो ये वो भारत है, वो तब का भारत और अब का भारत। संकल्पवान तो अब भी है, और इसी भारत में भगवान आते। वो चाहता तो स्विट्जरलैंड में भी आ सकता था, वो चाहता तो होनोलुलु में भी आ सकता था, वो चाहता तो जकार्ता में भी आ सकता था और युगांडा में भी आ सकता था, पर उसने भारत को चुना। कुछ तो होगा इस भूमि में। 1918 एक स्कूल में एक बच्चा 12 साल का पढ़ रहा है, अचानक उसे आवाजें सुनाई देती है बाहर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो शिक्षक से अनुमति लेता है, कहता है मुझे बाहर जाना है। वो जाके देखता है, देखता है तो एक सन्यासी वस्त्र धारण किए हुए एक युवक उसके पीछे कुछ भारतीय नारे लगाते हुए जा रहे, और अचानक अंग्रेजी अफसर वहां आते हैं और आक्रमण करते हैं, उन पर दंडों से मारते हैं उनको। इस बालक को इतना क्रोध आता है कि पत्थर लेता है और उस पत्थर को उस अफसर को जोर से मारता है और भाग जाता है। वो उसे ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। दूसरे दिन वो सारे अफसर इधर आते हैं स्कूल में, उस बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं, यही था वो, उसे लेके जाते हैं। उसको पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, वो कहते हैं आजाद। अर्थात स्वतंत्रता। उसको पूछते तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वो कहते हैं स्वाधीन था। तो तुम्हारा घर कहाँ है, वो कहते हैं जेल ही मेरा परमानेंट घर है। उसकी ऐसी उदंडता देखकर उसे पनिशमेंट दी जाती है 12। वो लेदर का, चमड़े का एक होता है ना कोड़ा, उससे मारने की। वो कहते हैं बस 12, ये तो बहुत कम है, 12 साल का है वो केवल। तो उसको ले जाते हैं, शर्ट निकालते हैं, उसकी कमीज निकालते हैं, और एक मोटा तगड़ा व्यक्ति आता है, उसको 12 उसको मारते हैं, पूरा चमड़ी उधेड़ जाती है, और फिर उसको दया के उसको 12 आने देते हैं, कहते हैं इसे ड्रेसिंग कर लेना। वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे क्वीन विक्टोरिया को दे देना। कौन था ये, चंद्रशेखर आजाद। तो ये वो देव भूमि है जहां पर ऐसे ऐसे वीर जन्म लिए। एक एक 100-100 किलोमीटर पर अगर हम जाएं भारत में, तो वहां एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन मिलेगा कि ये वहां होके गया और ये कितना महान है, हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में। कहीं पर भी चले जाओ, हर 100-100 किलोमीटर में देखेंगे एक संत है, एक महात्मा कभी होके गया, कोई साधु पुरुष, कोई चमत्कारी बाबा, कोई देशभक्त, कोई स्वतंत्र सेनानी, कोई स्वतंत्र वीर, कोई समाज सेवक, कोई ना कोई कहा ना कहा। इतने तो और कहीं नहीं होंगे। ये संतों की भूमि है, ये लीडर्स की भूमि है, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो हम सबका भाग्य है कि हमारा जन्म इस भूमि में हुआ और भगवान इस भूमि में आए। तो आज भारत की महिमा के विषय में थोड़ा लिखना हर एक, भारत की क्या क्या महिमा है, मुरलियों में आई हुई भारत की महिमा, इस पर पॉइंट्स लिखने हैं आज। एक तो बता दिया भारत अविनाशी खंड है, इस तरह से भारत के विषय में मुरलियों में क्या क्या आया है, आज की मुरली में भी है भारत के विषय में। तो ये है आज का होमवर्क सबके लिए, प्रश्नोत्तर। एक तो भारत की महिमा ये लिखना, और दूसरा भारत के दुर्भाग्य के क्या कारण, भारत का पतन क्यों हुआ ये भी लिखना। क्यों हुआ भारत का पतन, ऐसे किस कारण भारत के पतन का? क्यों पतन क्यों गिरा? क्यों वाम मार्ग में चला, वाम मार्ग में चले गए देवता इसलिए गिरा? और आपसी फूट और स्वार्थ विकार और स्त्रियों को नरक का द्वार कहने के कारण और परमात्मा को सर्वव्यापी कहने के, गीता का खंडन करने के कारण और भारत क्यों गिरा? द फॉल ऑफ पॉम्पे, क्यों गिरा भारत? आज लिखना इस पर चिंतन करना। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ गया भारत, अपनी संस्कृति को भूल दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आ गया। इतना अच्छा ये कारण है। और संस्कारों का पतन हुआ और भारत में चाणक्य कहता है ना, जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो केवल मां के गर्भ से नहीं, एक संस्कृति के गर्भ से भी होता है। और विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया? इसी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। मैकुलाय अपने स्पीच में कहता है ना, 1885 का स्पीच है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मैकुलाय, अभी जो सिस्टम चल रही है, पहले गुरुकुल था भारत में, अभी जो स्कूल की जो सिस्टम है स्टडी की, वो मैकुलाय सिस्टम है एजुकेशन की। मैकुलाय कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री। कब कह रहा है? 1885 लगभग शायद, कि मैं इस देश में सब जगह घूमा, आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल बेगर। इस देश में मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहा है 1885, उस समय वो कहता है, मुझे एक भी, अगर हमें इस देश को तोड़ना है, गुलाम बनाना है, तो इसकी संस्कृति पर वार करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक देश की संस्कृति पर वार हो जाता है, विधर्मी सत्ताएं संस्कृति पर आक्रमण करती है, तो वो देश गुलाम हो जाता है। और जो आक्रांता है, जो विदेशी है, जो उस पर आक्रमण करते, उनकी संस्कृति को तुरंत धारण कर लेता है, अपनी संस्कृति को भूलकर। यही एक कारण, ये भी एक कारण है भारत। और कब भारत क्यों पतन हुआ? भारत के इतिहास जैसा दिखाया गया वैसा है नहीं, हो तोड़ मरोड़ दिया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। क्योंकि इतिहास लिखने वाले कौन थे? विदेशी यात्री भारत आते थे, उन्होंने इतिहास लिखा है बहुत सारा, और उसके आधार पर फिर हमने ये जाना है, अच्छा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। इसलिए भारत का इतिहास क्या है किसी को पता नहीं। भावा कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने आया हूं मैं, किसी को पता नहीं इतिहास क्या है। और नालंदा, तक्षशिला, ये सब लाइब्रेरीज जो थी, सारी किताबें थी, 6-6 मास तक जलती रही, तो पता ही नहीं चला क्या था। ये भी एक कारण है। कितने कारण बन सकते हैं भारत के पतन का? स्वार्थी राजा है और लोभ के कारण, लोभ, लोभ वृत्ति बढ़ी और इसी का फायदा लिया विदेशियों ने, और आपसी फूट, लोभ और काम विकार, काम विकार, विलासिता, ये भी भारत के पतन का एक कारण रहा। और सत्ता, सत्ता का लोभ, दूसरों को दबाने की कोशिश की आप, और दुश्मनों से ट्रेटर बने, भारत में ही ट्रेटर बने, कितने सारे लोग भारत के ही खिलाफ हो गए। और आधुनिकता और अंधानुकरण किया, तो ये सारे कारण, और भी बहुत सारे निकल सकते हैं आज आप। और कुछ सारी कुप्रथाएं, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, ये सारी चीजें, और टू मच भक्ति में ये सब सेरेमोनियल्स, कर्मकांड, इसमें ही ज्यादा फंस गए। जातिवाद, कर्मकांड, सती प्रथा, क्या क्या शुभाशु, ये क्या क्या, कहाँ कहाँ फंस गए। इसकी वजह से भारत बिछड़ गया। और अलग अलग दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज इस पर थोड़े पॉइंट्स लिखने हैं हर एक को। स्टार्ट, प्रश्न उत्तर।
हमें जब ज्ञान मिला तो पता चला भारत में भगवान आए, तो ज्ञान से ज्यादा खुशी तो हमको उसकी
जब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विदेश गए लंदन में, तब उनके मित्रों ने उनको, वहां के मित्रों ने यहाँ की फिलोसॉफी के बारे में बताया। वो कहते हैं आई फेल्ट अशेम्ड, मुझे लाज ये लगा कि शर्म आई कि मैं जिस देश में रहता हूँ मुझे वहां का कुछ पता नहीं, ये लोग मुझे भगवद गीता क्या है बता रहे। वहां पे अध्ययन किया फिर उन्होंने।
आज की प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में क्वेश्चन है, ओम शांति भाई जी, मैं एक कुमारी हूँ, 15 साल से ज्ञान में हूँ, कंप्लीट रॉ फूड पर हूँ, थी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गया पर वेट लॉस हो गया, B12 कम है, क्या डाइट लेना है, प्लीज सजेस्ट मी।
इंजेक्शंस, B12 के इंजेक्शंस आते हैं वो चालू करते हैं क्योंकि B12 के जो सोर्सेस है वो नॉन वेज फूड है, पहली बात। दूसरा, मेडिकल के ये जितने ब्लड टेस्ट है, इफ यू बिलीव, यहां पर अभी थोड़ी सूक्ष्म बात है, अगर आपका विश्वास है तो फिर ये कम है तो फिर उसको ट्रीट करो। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं हमें इन सब की आवश्यकता नहीं, हम एकदम स्वस्थ है, उन्हें फिर आवश्यकता भी नहीं, परंतु वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, एकदम हायर वाले, वो ये सब में बिलीव नहीं करते। पर हाँ, जहां तक डिफिशियंसीज की बात है और ये सब है, इनिशियल स्टेजेस में ये सब चीजें करनी चाहिए और इसमें थोड़ा सा मदद ली तो कोई हर्ज नहीं है, ले सकते हैं। बजाय इसके कि इतनी सारी 10 चीजें अलग अलग खाओ, उससे तो बेटर है कि इंजेक्शन ले लो, क्योंकि इंजेक्शन का एडिक्शन नहीं है। इंजेक्शन आज लिया मुझे और चाहिए और चाहिए, ऐसा नहीं होता है इसलिए सब कुछ देखते हुए, सारे पहलुओं को का अवलोकन करते हुए ये निष्कर्ष है कि ले लो। बाकी इस पर डिस्कशन बहुत सारा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स, बट स्टिल। अभी दूसरा प्रश्न उनका है वेट लॉस, तो उसके बारे में तो हमने कहा है, जब भी रॉ पर जाओगे, फ्रूट्स पर जाओगे, वेट लॉस होगा, शुरुआत में होगा। पर हाँ, अगर जिन्हें कोई परवाह नहीं है संसार की, हमें इतना ही ठीक है, तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के साथ चलो। पर हाँ, दुनिया वाले जीना मुश्किल कर देते, पागल कर देते, तो दूसरों को प्रॉब्लम आती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो भी इस मार्ग पर जाएगा, रॉ वाला और फ्रूट वाले, उसको इस अग्नि परीक्षा से तो गुजरना पड़ेगा एक बार कम से कम। ये अग्नि परीक्षा ये एक बार तो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ठोसपन है शरीर में ये अनाज की वजह से, जैसे ही वो हटता है और आप चेंज करते हो तो एकदम से वेट लॉस होता है। इसलिए कहा इस प्राणी की यात्रा में ना तो हम फास्टिंग बता रहे, ना तो हम रॉ फूड बता रहे, ना तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बता रहे। हाँ, जो लोग सॉलिड लेते हैं उनके लिए ये सब बहुत आवश्यक है, जो कुक्ड खाते, जो लोग लिक्विड्स पर है उनके लिए कोई नियम नहीं है। सुबह 6 बजे से चालू करो, रात को 12 बजे अगर प्यास लगे, भूख लगे तो पी लो, कभी भी ले सकते। उनके लिए ये नहीं है कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, कोई नियम नहीं है उनके लिए कभी भी, क्योंकि आप केवल लिक्विड्स पे, लिक्विड को टूल बनाया है इसके लिए, यहाँ नहीं। हाँ, परंतु जो सॉलिड और वो सब करते हैं उनके लिए ठीक है। तो हम कह रहे थे कि जैसे ही हम, जो लोग कोई बीमारी से छूटने के लिए या अच्छा लगने के लिए या आध्यात्मिक कारण से रॉ पर या फ्रूट पर जाते हैं और फिर थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं, उनका वजन गिरता है, पर तुरंत गिरता है, बहुत फास्ट रीति से गिरता है, बहुत फास्ट डिटॉक्स होता है। इसलिए इस प्राणिक लिविंग में हम फास्ट डिटॉक्स नहीं कर रहे, वी आर डाइल्यूटिंग द डिटॉक्स, हम स्लो डिटॉक्स कर रहे जिससे वेट मेंटेन रहे और ये यात्रा सस्टेनेबल हो जाए। उसमें सस्टेनेबल नहीं हो पाती लोगों की यात्रा, दीर्घकालीन नहीं चल पाती। रॉ पे रहते हैं पर कितना समय रहेंगे, अनलेस एंड अंटिल बहुत दृढ़ संकल्प वाला है और बहुत मोटिवेशन है निरंतर, तो ही लंबा समय रॉ पे चलता है। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा आती है वजन का गिर जाना, पेट में खालीपन लगना, बार बार भूख लगना, पके हुए अन्न की चाह होना, क्रेविंग होती है, ये सब होता है उसमें, और बहुत सारी चीटिंग बिटिंग होती है। फिर लक्ष्मण जैसा कोई होना चाहिए, फिर 14 वर्ष का अनाहारी निराहारी, और सबसे मुख्यतः आंख सामने रखा रहता है सब कुछ, फिर क्या करे, खाना नहीं है पर सामने रखा है, तो वो ज्यादा माया बन जाती है। इसलिए रॉ से आई एडवाइस कि एकदम 100% रॉ वीगन पर नहीं, थोड़ा सा नीचे उतरो और इसे, हाँ थोड़ा सा, एक दिन ऐसा करो, एक दिन रॉ लो, एक दिन कुक लो, और कुक्ड कभी हमारी यात्रा फूड फ्रीडम की यात्रा है, फूड को छोड़ने की यात्रा नहीं है, खाना पीना छोड़ने की यात्रा नहीं है। लिक्विड्स पे जाने के बाद में वापस सॉलिड पर आना है। लिक्विड पे जाना तो एक परीक्षा है, एक तैयारी है, परीक्षा तो वास्तव में सॉलिड की है, लिक्विड फूड और फिर सॉलिड पे जाके आराम से बाहर निकल के आ जाना, इसे कहते हैं फ्रीडम। जो रॉ वाले होते हैं वो बिल्कुल स्पर्श नहीं करते कुक्ड को, घृणा होती है उनको। फ्रूट वाले पे, फ्रूट पे, जूसेस पे जो चला जाता है वो एक अलग ही होता है व्यक्ति, उसको नीचे आना ही नहीं है। वो कहता है इतनी हाई स्टेज से नीचे क्यों आए, पर वो डर है, एक भी वो भी एक डर है। हमें वो अवस्था में पहुंचना है, फूड सॉलिड ले लिया और कोई क्रेविंग नहीं, निकल के बाहर आ गए, लिक्विड ले लिया बाहर आ गए, इसको कहते हैं फ्रीडम। ये एक अलग ही अवस्था। इस अवस्था का वर्णन किसी भी नेचर क्योर की किताब में नहीं है, किसी भी नेचुरोपैथी में कहीं कहीं नहीं है। इतने हजारों सालों से भारत में ये सब चल रहा है, पर ये जो ज्ञान है अभी उभर कर बाहर आया है, इसलिए ये नव ज्ञान है, नया ज्ञान है प्राणिक लिविंग। ये भी अनअटैच्ड लक्ष्य है, डिटैचमेंट। खाना पीना छोड़ना ये लक्ष्य नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, पर खा के तुरंत बाहर निकल जाना ये है लक्ष्य। इसलिए रॉ फूड पे है तो पहले वजन गेन करो, उसके लिए 2-3 दिन से बता रहे क्या क्या करो। कई सारी चीजें हैं जो वजन बढ़ाने के लिए की जा सकती है, और खाने के अलावा भी, ऐसा नहीं कि खाने पीने से ही वजन बढ़ता है, एक्सरसाइज चाहिए उससे वजन बढ़ता है, अच्छी एक्सरसाइज चाहिए। आप खुद ही प्लान करो, यू डेवलप योर ओन रेसिपीज, आप अपने डिजाइनर खुद बनो, बी योर ओन डिजाइनर, खुद डिजाइन करो अपनी प्राणिक लिविंग को।
रचनात्मक दर्जी,
आर्टिस्टिक टेलर, तो खुद टेलर मेड करो अपनी जर्नी को, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी परिस्थिति देखकर, अपने कार्यों को देखकर, अपने जॉब को देखकर, उम्र को देखकर, अपने पैसों को देखकर। ऐसे नहीं कि हमने बोला एवोकाडो ही चाहिए, ऑलिव ऑयल ही खाना है, दूसरा कुछ नहीं लेना, कहां से लाएगा बेचारा, रोज बादाम पिस्ता काजू कहां से लाएगा, और उसका भी मिल्क, नट मिल्क कितने महंगे होते हैं, नट मिल्क सारे, सोया मिल्क, ओट मिल्क, बार्ले मिल्क, राइस मिल्क, बहुत महंगे होते हैं ये सारे, कोकोनट मिल्क। तो जहां रहते हो, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल, वहां का देखो, परिस्थितियों को स्टडी करो, उस अनुसार से अपने डाइट को प्लान करना है, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही हम सॉलिड लेते हैं या हेवी लेते हैं, एकदम चेतना डाउन आ जाती है तुरंत, रोज दोपहर में नींद आती है, ऐसा लगता है सो जाओ, दोपहर में अदरवाइज नींद की आवश्यकता ही नहीं है। पहले हमको याद है, हम दोपहर में ऐसे सोते थे कि बस सीधा कोमा में ही चले जाते थे, उठने की इच्छा ही नहीं होती थी, 1-2 घंटा ऐसे बीत जाते थे कि ऐसा लगता है था अरे अरे उठो ही नहीं। राधा दिन नींद, अभी मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, बस नो स्लीप, मेडिटेशन में बैठ जाओ बस, उसमें नींद आई तो भी चलेगा, पर सोते नहीं, लेट नहीं करने, योग निद्रा जो भी है अधिष्ठान में बैठ जाते हैं, बस अलार्म लगा के 2 बजे अलार्म लगाओ, 3:30-3:30 तक उठना ही नहीं, बिल्कुल ना हाथ हिलेगा, ना पैर हिलेगा, ना आंखें बंद, उसी में नींद पूरी हो जाती है, ऐसा लगता है 4 घंटे की नींद हो गई। पर हाँ, अगर वही अनाज अगर ले लिया, अगर सॉलिड फूड ले लिया, तो फिर सीधा कोमा। उलट पुलट हो जाता है व्यक्ति, और ब्रह्मचारियों के लिए आदेश है कि वो दोपहर की निद्रा ना करे।
आदेश नहीं, कड़ा आदेश।
संसार में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्सेस, जितनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वहां पर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्सेस होता है, BT। उसमें पूरे क्राइटेरिया होते, कौन इसमें एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन में तुमने ये किया हुआ हो तो वहां पर एडमिशन होती है। फिर उनकी ब्रह्मचारियों की अलग से ट्रेनिंग होती है, पूरी पूरा दिनचर्या उनकी फिक्स्ड होती है, परमिशन लाने की होती है माँ बाप से, आधार कार्ड, सब फुल ऑफिशियल ट्रेनिंग। अगली भट्टी तो वो होनी है, द न्यू, द प्योर लाइफ। इंग्लिश की इसी भट्टी के साथ चालू करना था, सब कुछ रेडी था, पर टाइम में सोचा कि इंग्लिश और हिंदी एक साथ करना मतलब इसके साथ थोड़ा अन्याय हो जाएगा, इसलिए उसको हटा दिया। अभी देखेंगे आगे। तो ब्रह्मचारी के लिए बहुत सारे नियम हैं। ब्रह्मचारियों के लिए आदेश ही नहीं है कि दोपहर में सो जाए, और हम सोते इसलिए क्योंकि हम कहते हैं हम सुबह जल्दी उठते, हमारे पास बहुत ही तगड़ा कारण है। ये दोपहर का सोना हमको यहाँ आके पता चला, हम मुंबई में थे वहां कौन सोता है दोपहर में, लोग काम करते हैं, ड्यूटी आईसी में रहते हैं हम, दिन भर काम करते हैं लोग, यहाँ आके पता चला अरे ये क्या है यहाँ दोपहर में सब निद्रा लोक में चले जाते सोना भी होता है, एकदम स्ट्रेंज लगा ये क्या है। तो फिर पता चला नहीं नहीं वो दोपहर में ये लोग जल्दी उठते ना इसलिए सोते, अमृत वेला जल्दी। अरे पर सोने का उठने से नहीं है संबंध, संबंध है खाने से। सॉलिड फूड निद्रा लोक में भेजता है, लिक्विड जागरण लाता है, सॉलिड फूड गिराता है, लिक्विड उठाता है। ज्ञान योग धारणा सेवा, लिक्विड में रहो ज्ञान बढ़ता है, सॉलिड पे जाओ ज्ञान कम होता है। योग लिक्विड पे जाओ ज्ञान बढ़ जाता है, सॉलिड पे जाओ योग कम हो जाता है। धारणाएं अपने आप धारणाएं बढ़ जाती है लिक्विड पर, सॉलिड पर धारणाएं कम हो जाती है। सेवा एकदम जोश आवेश, कोई थकान ही नहीं, थकाता कौन है, सॉलिड फूड थकाता है, लिक्विड फूड उड़ाता है।
सॉलिड फूड से भारत का पतन हुआ,
सॉलिड फूड से ही तो भारत का पतन हुआ है, भारत का पतन सॉलिड फूड से नहीं ईटिंग से हुआ है, खाना। दो ही कारण है देवताओं के पतन का, सबसे पहला कारण देहभान और दूसरा कारण भोजन। उसने पतन कर दिया, देहभान में लाया, इसलिए अभी प्रोसेस को उल्टा करना है, तो धीरे धीरे पहुंचना है वहीं तक, उसी देव पथ को पाना है। तो उसकी पहली स्टेप है लिक्विड्स, धीरे धीरे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते जाओ, और शुरुआत शुरुआत में जो एकदम ही थिन लिक्विड्स, वही तो भूख लगेगी, थिक लिक्विड करो, थिक थिक सॉस, थिक सूप्स, सूदी हो गया, स्मूदी हो गया, सूप हो गया, ब्रॉथ हो गया, पॉरिज हो गया, ये सारी जो चीजें, खिचड़ी करो परंतु पतली एकदम, आइसक्रीम, ये सब भी, आइसक्रीम भी अलाउड है इस जर्नी में, रागी ये सब अलाउड है, ग्रेन्स जो है उसको पर लिक्विड फॉर्म में है, वो भारी थोड़ा पर वो अलाउड है, क्योंकि हमको अगर लिक्विड ही करना है तो हमको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली रॉ लिक्विड्स, केवल जूसेस और केवल स्मूदी, नहीं, सब इंक्लूड करो इसमें, कुक्ड और अनकुक्ड दोनों, क्राइटेरिया एक ही है बस, जो होना है उसमें नो रिपिंग नो चीविंग नो बाइटिंग, ना चबाना ना फाड़ना ना काटना, बस ये ना हो, लिकिंग चलेगा, चाटना सकिंग चलेगा,
जीभ में टच ना हो
जीभ में टच होने दो, परंतु ये देखते ही हम पाएंगे कि सॉलिड फूड डिसकनेक्ट्स यू फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस एंड लिक्विड फूड कनेक्ट्स यू टू हायर कॉन्शियसनेस। जैसे लिक्विड पर जाते हो चेतना का आरोहण हो जाता है, सॉलिड पर जाते चेतना नीचे आ जाती है। ये एक सूक्ष्म अनुभव से जानोगे, अवेयरनेस अलर्टनेस बढ़ जाती, नींद ही खत्म, नींद खत्म। पहले चुटके लेते रहते वो सॉलिड फूड के चुटके। नेक्स्ट, एक प्रश्न में ढेर सारे प्रश्न के उत्तर आएंगे,
अभी आगे 20 प्रश्न सारे एनिमा से संबंधित है,
उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, अगला ले मार लेंगे, एक पूरा चैप्टर हो चुका है इसमें
एनिमा का। आ वो कौन सा है वो?
ये देखो, पर बता, संजीवनी क्रिया कहाँ गया, पिकनिक चिकित्सा अन्न दोष, संजीवनी, प्राणिक संजीवनी, 28 नंबर का एपिसोड था 10 तारीख को, बराबर 10 तारीख को,
10 जनवरी को,
यहाँ पूरा एनिमा पॉट लेके पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सब कुछ दिखाया था।
10 जनवरी को था,
10 दिसंबर को, 10 दिसंबर प्राणिक संजीवनी 28 नंबर का एपिसोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्राणिक यात्रा में अब तक तो सब ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जैसे कि भाई जी ने कहा कि इस यात्रा में देह से संबंधित सभी बातों से मानसिक और बौद्धिक रूप से डिटॉक्स होगा, और जो छिपे हुए रोग के अंश हैं वो बाहर आएंगे, उन रोगों को नेचुरल तरीके से ही ठीक होने दे या कोई उपचार करे?
नहीं, उसमें है साक्षी भाव, डिटैचमेंट, ऑब्जर्व, देखते रहना उनको, वो निकलेंगे उनकी निर्जरा होगी, वो निकलेंगे हमेशा के लिए जाने के लिए, पर एक बार तो उनको निकलना जरूर है। जो बचपन का ट्रॉमा है, कल हमने देखा था कितने एंग्जाइटी से बेचैनियां, बचपन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जीवन में कि अभी उनका प्रभाव चल रहा है। एक आत्मा आई थी हमारे पास ओपीडी में, वो ऐसे ऐसे करती रहती थी बहन, बस ये नॉन स्टॉप ये उसकी बीमारी थी, बिना थके गर्दन इधर गर्दन इधर गर्दन इधर, और वो कितने परेशान थे सब लोग, इतने सारे रिपोर्ट्स थे और कोई इलाज समझ ही नहीं आ रहा था क्या इलाज है। कितने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिए, एमआरआई करा लिए, पर उसकी बीमारी थोड़ी देर ठीक रहेगी और जैसे उससे बात करने लगो वापस चलो ये इधर 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 इधर। फिर कितने सारे सेशंस हुए, काउंसलिंग सेशंस हुए, तो कहीं कहीं जाके बहुत सारे सत्य प्रकट हुए। सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री थी बचपन की, अब्यूज की हिस्ट्री थी, उसी का कजन ब्रदर, वो कहाँ बचपन में वो जो कुछ हुआ, बाद में तो ज्ञान मिल गया इसमें आ गए, पर वो जो असॉल्ट था, वो जो ट्रॉमा था, वो जो हादसा था, वो किसी के साथ शेयर ना कर सकी, बता ना सकी, और फिर ये मैनिफेस्टेशन था उसका, अभिव्यक्ति इस तरह से हो रही थी। किसी को कुछ भी हो सकता है, हमको लगता है ये शरीर की बीमारी है, शरीर की बीमारी नहीं, दबा हुआ इमोशन, दमित भावनाएं इस तरह से प्रकट होती है शरीर पर, जिसका मेडिकल वालों को कुछ पता नहीं चलता ये हो क्यों रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, तो इसको कहते हैं मेंटल डिटॉक्स। मेंटल डिटॉक्स अर्थात संस्कार बाहर निकलेंगे, इमोशनल डिटॉक्स अर्थात हमारे जो इमोशंस है, हलचल होगी, भय होगा, खालीपन लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ कर दूं, ऐसा लगेगा कुछ भी जाके खा लूं, कुछ भी क्रेविंग होगी, ये इमोशनल डिटॉक्स होता है। एक होता है फिजिकल डिटॉक्स, जो शरीर में भी कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं, ये सब होता है। एक होता है मन भावनाएं, हलचल होती है, मूड चेंज होता है, गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होता है, ऐसा लगता है किसी को मारू जाके ये सब पीरियड में ये सब होता है। किसी को रोने की इच्छा होती है, कुछ कुछ होता है, सब होगा, और किसी को कुछ भी नहीं होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। हमने इतना सब किया, हम सोच रहे थे अब चालू होगा मेंटल डिटॉक्स, तो हुआ ही नहीं। इमोशनल डिटॉक्स कब चालू हुआ, वो कहते हैं कि होगा होगा, अरे कब होगा, तो किसी को कुछ भी नहीं होता है, किसी को सब होता है। लोग कहते हैं हम उपवास करते हैं तो चक्कर आते हैं, हमने भी किया 72 आवर्स तक किया, कुछ भी नहीं हुआ, ना चक्कर हुआ ना कुछ हुआ, ना किसी को पता भी नहीं उपवास चल रहा है करके, सारा दिन चर्या चल रही है, सुबह से लेकर रात तक भागा दौड़ी चल रही है, वर्क रनिंग चल रहा है, जिम चल रहा है, सब चल रहा है, क्लासेस चल रही है दिन में दो दो तीन दिन, ना तो मुंह सूख रहा है ना तो कुछ हो रहा है। और लोग कहते हैं अरे 12 घंटे हो गए मुंह सूख रहा है, उपवास किया ना आज। किसी को सब होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, ये सब है। तो हाँ, तो ये भी है कितना समय से कौन अभ्यास कर रहा है, किसने अपने मन को कैसा, सारी ट्रेनिंग शरीर की है ही नहीं, मन की है। आपने अगर मान लिया मुझे चक्कर आएंगे तो आएंगे जरूर आपको अगर विश्वास है कि मुझे ये सूट नहीं होता है तो नहीं सूट होगा, और एकदम करेंगे। इसलिए स्लो स्लो करना है, बहुत धीरे 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 जाके देखो। रोज 8 बजे खाते हो, अब 8:15 आगे कर दो, 15 मिनट्स आगे जाओ, देन ये बॉडी जो है ना ट्रेन होती है, उसको कोई भी आदत डालो वो डलती है, उसको भूखा रखने की आदत डालो रहेगी, उसको एक एक घंटे में खिलाओ तो बराबर जैसे 1 घंटा पूरा होगा, उसको चाहिए कुछ खाने को। हाँ, वो हैबिट है, ईटिंग इज अ हैबिट। तो ये भी वैसा ही है। तो ये सब होगा जब निकले तो साक्षी होकर देखना, और ज्यादा तकलीफ हो तो सो जाओ, लेट जाओ, या कुछ पढ़ो, म्यूजिक सुनो, कुछ किताबें पढ़ो, कहानियां पढ़ो, कोई क्लासेस सुनो,
मन को डाइवर्ट करो, बिजी करो,
बस पिकनिक पे चले जाओ, प्राणिक पिकनिक, लंबी एक्सकर्शन पर चले जाओ, लॉन्ग फॉरेस्ट वॉक, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करेंगे आज तो जा रहे हैं ना, तो शायद हम लोग आज नहीं जा रहे। अच्छा,
तो इस प्रश्न का उत्तर निकला साक्षी अवस्था
से ये संवेदना है, उनको देखना है, मन से विकार उत्पन्न निकल रहे हैं बाहर, उनको देखो और सोचो ये चला जाएगा, अनित्य है, चला जाएगा, भय उत्पन्न हो रहा है, चला जाएगा, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट,
स्लीप मैनेजमेंट इज अ चैलेंज, हाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड।
स्लीप मैनेजमेंट का संबंध सीधा फूड से है, अगर कुक्ड फूड ले रहे, सॉलिड फूड ले रहे हैं तो वो 8 घंटा नींद चाहिए, 6 घंटा नींद चाहिए, या उससे भी 12 घंटा भी लग सकती है। स्लीप डिपेंड करता है उम्र क्या है, काम कितना करते हो, और मन कैसा है। अगर दुखी बहुत है तो नींद कहाँ आती है, बेचैनी, करवटे बदलते रहते हैं, और जो एकदम खुश है, संतुष्ट है। हमारे यहाँ पेशेंट आए थे, अभी हाथ धोया, अभी पानी टपक रहा है और नींद आ गई इतनी फास्ट अभी जस्ट हाथ धोया भोजन करते करते कई लोगों को इतनी फास्ट नींद आ जाती है और कईयों को नींद ही नहीं आती है। एक एक घंटा नींद आने को लगता है, गोलियां ले लेके भी नींद नहीं आती। वो डिपेंड करता है सब बहुत सी बातों पर, इमोशंस पर डिपेंड करता है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड करता है। आप एकदम कुछ तो ऐसा वायलेंट सीन देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो और उसके बाद नींद कहाँ आएगी, फिर नहीं आती है नींद। इसलिए हो सके तो सोने से 2 घंटा पहले इंटरनेट ऑफ। रूम में सबसे पहले 2-3 क्राइटेरिया, सबसे पहले कमरे में पूरा अंधकार कर दो, नो जीरो बल्ब, नथिंग, कुछ नहीं, क्योंकि डार्कनेस में मेलाटोनिन सिक्रेट होता है यहाँ पर पिनियल ग्लैंड, तो वो स्लीप मैनेजमेंट करता है। तो सबसे पहले पूरा अंधकार। दूसरा, जितना हो सके कमरे में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, मोबाइल को क्या, हाँ जिनको इमरजेंसी है फोन उठाने पड़ते वो अलग, अदरवाइज नो वाईफाई, नो इंटरनेट, और हो सके तो 0 इलेक्ट्रॉनिक्स इन द रूम, आसपास रखना ही नहीं है, ये दूसरा। तीसरा, फिक्स टाइम कर दो सोने का, सोने का टाइम फिक्स कर दो। और चौथा, भोजन बहुत पहले हो चुका हो, 6 बजे, जितना हो सके 6 बजे पूरा कर दो सारा खाना पीना जो भी है, बस चैप्टर क्लोज 6 o'clock। और दूसरा, अगर नींद नहीं आ रही है तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन द बेड, उठ के बैठ के स्टडी करो, योग करो, कुछ भी करो, बॉडी स्कैनिंग करो, कुछ भी करो, योग निद्रा करो। योग करो तो नींद अपने आप आएगी, बाबा सुनेगा तो क्या कहेगा, मैंने राजयोग सुखाया, और राजयोग ये लोग नींद लाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये जागरण के लिए राजयोग। तो स्लीप मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, और स्लीप चैलेंजिंग हो सकती है, और इस यात्रा में कई बार ये भी हो सकता है कि नींद तो कम भी होती है, कई लोगों की बढ़ भी जाती है, 12 घंटे हो जाएगी, उसको भी साक्षी होकर देखो। इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं देनी अपने आप को, जैसा चल रहा है नींद चलने दो, आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अमृत वेला भी सो जाओ, वो नहीं, नियम नियम है। नेक्स्ट,
उम्र 38 ईयर, और कोई तकलीफ नहीं है, कुछ दिनों से बस दुबला पतला दिख रहा हूँ।
ऐसा दूसरे कह रहे हैं या खुद सोच रहे हो?
शुभ चिंतक चिंता में है, ये क्या हो गया है,
ये वही तो,
जाकर इलाज करवाओ। मैं बस उनको बताता हूँ, लूज मोशन हो रहा है, खाने पीने का दिल नहीं करता, और कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उनको संतावना दे रहा है वो।
हमारे ओपीडी में कल ही एक हॉस्पिटल की एक स्टाफ है, उसकी बेटी आई थी, उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, वो सब कुछ खाती है, सब कुछ करती है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनका बढ़ता नहीं है, तो सबसे पहले तो ब्लड चेकअप सारा करा लो, एक फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टाइम एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करो, थोड़ी कसरत करो, और तीसरा, जो भोजन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा ठोस आहार इंक्लूड करो जिससे वजन बढ़े, जैसे आलू है, स्वीट पोटैटो है, ये हो गया, डेट्स है, उसको इंक्लूड करो, ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखो, उसका क्रीम बना दो, और सूप है, पोहा इंक्लूड करो, ये सारी चीज़ें थोड़ा आहार में लाओ। डबल जैकेट पहन लो, ठीक है। ये सारी चीजें करो तो होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे। और वजन बढ़ना या वजन कम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा पागल नहीं हो जाना है उसके पीछे, अपने आप बढ़ेगा वो। घटने को टाइम लगा ना, तो बढ़ने को भी टाइम लगेगा। और लोग क्या करते हैं, वजन कम करने के लिए फास्टिंग करते, वो तो बहुत गलत है। फास्टिंग वजन कम करने के लिए नहीं है, वजन घटाने के लिए फास्टिंग करते हैं, वो नुकसान दे सकता है। नेक्स्ट,
लगभग इसी तरह का प्रश्न है, लोग कमेंट कर रहे हैं, तुम बूढ़े हो गए, बीमार समझ रहे हो, क्योंकि त्वचा का रंग धीमा पड़ गया है, चेहरे की थोड़ी चमक चली गई, लेकिन
हमने तो सोचा था कि भाई ये यात्रा में एकदम आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चेहरा एकदम ये हो जाएगा, बाल एकदम बाल काले काले हो जाएंगे, और यहाँ हो रहा है सब उल्टा उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये क्या हो रहा है?
लेकिन एनर्जी बढ़ गई है।
हाँ, एनर्जी बढ़ गई, पर वो कौन देखता है?
खुशी पहले की तरह है, अब तक हमने इनर, टोपी, मोजा, जूता, कंबल, गर्म पानी यूज नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है, और जहां तक समझा हूं, कि कुछ दिन पहले तक ब्लैडर की तरह फूला, बॉडी फूला था, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा,
विश्वास है ना, तो हो जाएगा। बस यात्रा में आगे बढ़ते रहो, इसमें बहुत धीरज की आवश्यकता है, इसलिए ये सब चीजें होगी, ये फिजिकल डिटॉक्स के लक्षण है सारे, पर धीरे धीरे अचानक अपने आप वेट गेन भी हो जाएगा, और सब कुछ वापस आ जाएगा। पर धीरज कंटिन्यू, चराई वेती चर आगे बढ़ते रहो। एक और पढ़ लो कोई। अच्छा एक मोबाइल में है।
मैं एक
उधर
मैं गृहस्थी हूँ, दो बच्चे हैं, मैं नहीं कोई और बता रहा है। छह साल का बेटा है, एक 10 महीने की बेटी है। पास्ट में बहुत सी गलतियां हुई हैं, अब आगे बढ़ना है। भट्टी भी एज इट इज फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट यथाशक्ति कर रही हूँ। वांट सेल्फ प्रोग्रेस, भाई जी की क्लास बहुत मदद करती है। माई क्वेश्चन इज दैट कैन आई स्लोली दीज भट्टी पॉइंट्स का बच्चों के साथ प्रयोग कर सकते हैं? मुझे नींद भी बहुत आती है।
पहले अपने साथ करो, बच्चों को अभी छोड़ दो। बच्चों को अगर छोड़ दो, 18 साल के हो जाने दो, उसके बाद उनको करना। अनलेस एंड अनटिल वो खुद इतने मोटिवेटेड है तो फिर ठीक है, अन्यथा 18 से 80 साल तक ये सारी प्राणिक लिविंग के लिए क्राइटेरिया है। नीचे वाले भी कर सकते हैं, परंतु अवेयरनेस कितनी है उसके ऊपर, माँ बाप कितने अवेयर है, बच्चे कितने अवेयर है। पहले अपना कल्याण करना है, बच्चों को छोड़ो अभी। बच्चे जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उनको करने दो। पहले खुद का कल्याण करो।
किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करे।
वो उनका, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से है, तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए उनको अपना जीवन जीने दो, उसको जो करना है करने दो, उसको ये कर वो कर ऐसा कर वैसा कर, उसको छोड़ो ना, उसको स्वतंत्रता दो थोड़ी। हाँ तुम प्रोटेक्ट करो उसको, उसके तरफ ध्यान रखो, उसको कुसंग में नहीं जाने दो, परंतु व्यक्तिगत उनको खुद डिसीजन लेने दो, खुद गिरने दो और खुद खड़ा होने दो। ये पैम्परिंग नहीं करना है उनको, इसलिए उनका ये भी मोह है, इसको भी हटाओ थोड़ा। और रही बात खुद के प्रोग्रेस की, वो खुद ही मार्ग प्रशस्त करना है अपना, खुद ढूंढो। मेरे लिए इतने सारे जो टूल्स बताए सबसे उपयुक्त तो क्या है, कौन कौन सा मैं कर सकता हूँ कर सकती हूँ। ये एक प्रश्न यहाँ है, वे पूछ रहा है, डज शेविंग कुक्ड फूड टिल लिक्विड फॉर्म इज सेम एज टेकिंग लिक्विड्स? कुक्ड फूड को च्यू करना, कब तक चबाना? जब तक वो लिक्विड ना बन जाए। एक ये, और दूसरा है सीधा लिक्विड लेना, क्या है दोनों सेम है? नहीं, उसमें चबाना आता है, और चबाना आते ही हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं चबाने वाले, और हमारे चबाने के साथ इतनी हजारों रेसिपीज जुड़ी हुई है, बचपन से जुड़ी हुई सारी आदतें, की सबसे गहरी आदत है चबाना, चेतना की सबसे गहरी आदत। इसलिए एक दिन पूरा दिन चबाओ मत, देखो क्या हाल होता है शाम तक। ये लेके ये पेन को चबाना चालू कर देंगे, नाक को चबाएंगे, कन्ने को चबाएंगे, कुछ तो चबाना ऐसा लगता है चबाऊं। परंतु जैसे ही लिक्विडिटी स्टैब्लिश होती है शरीर में, ऊर्जा एकदम ऊपर चली जाती है, पूरे शरीर में लिक्विड 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 का अनुभव होता है। तो एक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चीविंग फूड एंड कुक्ड फूड, ये ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट, इनका प्रॉब्लम यह है कि मैंने लिक्विड्स की सारी लिस्ट बनाई है और वो 1000 कैलोरी भी नहीं हो रही है, बट टू माई सरप्राइज आप कहते हो कि वन कैन टेक 7000-7000 कैलोरीज। वंडरिंग हाउ टू गैदर लिस्ट ऑफ जूसेस, नट मिल्क, कहाँ से लाए लिस्ट? अरे नट इंटरनेट पे सब है, खुद अपनी रेसिपीज डेवलप करो। नट मिल्क में कितनी कैलोरीज है, क्या कुछ नहीं है। माई करंट इंटेक, इनका करंट इंटेक 1200 कैलोरीज है। आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ लिस्ट, ढूंढो मिल जाएगा, सारी लिस्ट है। लिस्ट खाना बढ़ाने के तो कोई चिंता ही मत करो। खाना कम होने की चिंता होती है, इनको बड़ा कैसे बढ़ाओ उसकी चिंता है। इधर तो हजारों चीजें हैं, आलू खाओ, शकरकंदी खाओ, सो मेनी कुछ भी है, ग्रेट्स खाओ, नट मिल्क लो, सूप बनाओ उसके ऊपर, वो डालो, थिक कर दो सारा। बहुत सारी चीजें, कैलोरीज तो बढ़ाना बहुत ही आसान है। घी, 100 ग्राम घी जो होता है ना, उसमें 900 कैलोरीज है 100 ग्राम घी में। यहाँ लोग डिब्बा पीने वाले भी आते हैं, बोलते हैं हम तो इतना पीते फिर भी वजन नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रश्न थे, बाकी प्रश्न कल देखेंगे। तो जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंच नीच सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते, उस देव भूमि के ध्यान में मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। ये वो देव भूमि है, हम संकल्पवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, चंद्रशेखर आजाद बनना है, लक्ष्मण बनना है, हनुमान बनना है, ऐसी शक्तिशाली हमारी संकल्प हो। ओम शांति।
जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सा भाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पांव तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सा भाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ।